71 ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो शायद सबकी जिंदगी का हिस्सा है, हमारी डिजिटल दुनिया और उस पर जो असर पड़ रहा है।
बिल्कुल, आज हम बात करेंगे क्रिस हेज के विचारों पर आधारित एक काल्पनिक किताब के बारे में, द साइरन्स कॉल, अटेंशन एल्गोरिदम्स एंड डेमोक्रेसी। अब ये साफ कर दें कि ये कोई असली किताब नहीं है जिसे हेज ने लिखा हो।
हाँ, ये जरूरी है बताना, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है वो उनके काम और विश्लेषण के आधार पर एक खाका खींचती है, और इसके जो आइडियाज है ना वो आज के टाइम में बहुत बहुत ज्यादा रेलिवेंट है।
बिल्कुल रेलिवेंट है, क्योंकि देखिए ना, हम सब महसूस करते हैं इन्फॉर्मेशन की बाढ़। ऑनलाइन बहसें इतनी गर्म हो जाती हैं और कभी कभी लगता है जैसे समाज जैसे बट सा गया है।
हाँ, तो आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा इन्फॉर्मेशन का माहौल है, खासकर ये टेंशन इकोनॉमी और ये जो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम है, ये सब चीजें कैसे बन रही हैं, कैसे शेप हो रही हैं।
और ये समझना मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि भाई टेक्नोलॉजी हमारी सोच को, हमारे समाज को, यहाँ तक कि हमारे लोकतंत्र को कैसे बदल रही है।
ये उन सब के लिए काम की बात है जो इस इन्फॉर्मेशन के ओवरलोड से परेशान है या समाज में जो ये खिंचाव बढ़ रहा है उसे लेकर चिंतित हैं।
तो चलिए क्रिस हेज के इन संभावित विचारों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं।
हाँ, शुरू करते हैं लेखक से ही। क्रिस हेज मतलब है कौन ये, और इनका नजरिया इतना खास क्यों माना जाता है?
तो क्रिस हेज वो अमेरिका में काफी जाने माने पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेखक हैं। आपने शायद उनका MSNBC पर शो देखा हो, ऑल इन विद क्रिस हेज।
अच्छा, हाँ।
उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी से फिलोसफी पढ़ी है, द नेशन मैगजीन के साथ भी जुड़े रहे हैं। उनकी पहली किताब थी ट्वाइलाइट ऑफ द एलीट्स, उसने भी काफी ध्यान खींचा था सिस्टम के मुद्दों पर और भरोसे की कमी पर।
अच्छा, तो उनकी खास बात यह है कि वो सिर्फ ऊपर ऊपर की राजनीति नहीं देखते, बल्कि वो सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है उस पर फोकस करते हैं।
हाँ, और मजे की बात यह है कि वो खुद मीडिया इंडस्ट्री में है लेकिन उसकी आलोचना भी करते हैं।
तो एक इनसाइडर आउटसाइडर वाला पर्सपेक्टिव हुआ।
बिल्कुल, और फिलोसफी बैकग्राउंड से शायद उन्हें वो नैतिक सवाल, वो गहरे सवाल उठाने में मदद मिलती है, और जर्नलिज्म से वो जमीन से जुड़े रहते हैं।
सही बात है। तो ये जो काल्पनिक किताब है द साइरन्स कॉल, इसका मतलब सार क्या है, कहना क्या चाहती है ये?
देखिए, एक तरह से ये हमारे आज के डिजिटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बीमारियों का डायग्नोसिस है। ये बताती है कि कैसे इसका जो पूरा बिजनेस मॉडल है, यानी हमारा ध्यान खींचना और उसे बेचना,
हाँ,
वो असल में एक अच्छे हेल्दी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ जाता है।
और ये साइरन्स कॉल नाम, ये उस ग्रीक मिथक से है ना, जहाँ वो साइरन अपने गाने से नाविकों को लुभा लेती थी।
हाँ, बिल्कुल वही। यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और उनके एल्गोरिदम्स, वो साइरन का गाना है।
अच्छा, मतलब वो जो अंतहीन कंटेंट हमें दिखता है वो गाना है जिसे एल्गोरिदम चुन चुनकर हमें परोसता है। और अक्सर कैसा कंटेंट होता है? गुस्सा दिलाने वाला, चौंकाने वाला,
या बहुत भावुक करने वाला, क्योंकि यही चीजें हमारा ध्यान सबसे ज्यादा पकड़ती हैं।
हाँ, तो ये गाना सुनने में तो बड़ा लुभावना लगता है, स्क्रॉल करते रहो, देखते रहो, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे समाज को, मतलब आपसी फूट, अविश्वास और शायद लोकतंत्र के कमजोर होने की तरफ ले जा रहा है।
तो किताब का जो बड़ा सवाल है वो यही है कि कैसे हमारी ऑनलाइन दुनिया को जानबूझकर हमारी साइकोलॉजिकल कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए बनाया गया है। और इसका असर क्या हो रहा है हमारी सोचने समझने की ताकत पर, सच को पहचानने की क्षमता पर, मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करने की काबिलियत पर?
मतलब ये सिर्फ फेक न्यूज या पोलराइजेशन से कहीं आगे की बात है, ये तो जैसे हमारे दिमाग की और समाज की वायरिंग ही बदल रही है।
बिल्कुल, तो चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। ये साइरन का गीत, मतलब ये अटेंशन इकोनॉमी और एल्गोरिदम, ये काम कैसे करते हैं असल में?
हाँ, ये समझना जरूरी है। अटेंशन इकोनॉमी का सीधा सा मतलब है एक ऐसी इकोनॉमी जहां आपकी अटेंशन, आपका ध्यान सबसे कीमती चीज है।
करेंसी है एक तरह से।
बिल्कुल, हम जो ये फ्री प्लेटफॉर्म यूज करते हैं ना, वहां हम कस्टमर नहीं है, हम प्रोडक्ट हैं। हमारा ध्यान ही वो माल है जिसे ट्रैक किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और फिर एडवर्टाइजर्स को बेचा जाता है।
अच्छा, और ये सब मुमकिन होता है एल्गोरिदम से?
हाँ, ये जो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये लगातार सीख रहे हैं कि हमें स्क्रीन से चिपकाकर कैसे रखा जाए, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, सब इसी पर चल रहे हैं।
तो वो हमारे हर क्लिक, लाइक, शेयर, कितनी देर क्या देखा, सब ट्रैक करते हैं,
सब कुछ, और उसी के बेस पर अंदाजा लगाते हैं कि अगला कौन सा वीडियो या पोस्ट हमें रोक लेगा।
और इसमें एक बात और है ना कि ये एल्गोरिदम अक्सर उस कंटेंट को ज्यादा पुश करते हैं जो भड़काऊ हो या बहुत इमोशनल हो या एकदम नया हो।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि वही चीजें फट से हमारा ध्यान खींचती हैं। एल्गोरिदम को सही गलत से मतलब नहीं है, उसका काम है एंगेजमेंट बढ़ाना, और वो ये काम क्या कहते हैं, बड़ी क्रूरता से करता है।
हाँ, वो जो एक कोट जैसा विचार था, एल्गोरिदम जनमत का तटस्थ मध्यस्थ नहीं है, यह आक्रोश के सिम्फनी का कंडक्टर है।
बिल्कुल, मतलब वो सिर्फ दिखा नहीं रहा कि लोग क्या देख रहे हैं, वो चुन रहा है कि कौन सी आवाजें ज्यादा तेज सुनाई दे, वो कंडक्ट कर रहा है।
और इसका एक इतिहास भी है। पहले मीडिया अलग था, कुछ नियम कायदे थे, इंटरनेट आया, फिर सोशल मीडिया, पुराने सारे गेटकीपर हट गए।
हाँ, वो टाउन स्क्वायर वाला वादा तो याद ही होगा।
हाँ,
हमसे एक डिजिटल टाउन स्क्वायर का वादा किया गया था।
हमें अरबों अलग अलग स्लॉट मशीनें दी गईं, जिनमें से प्रत्येक अपने व्यक्तिगत उपयोगकर्ता की विशिष्ट कमजोरियों के अनुरूप बनाई गई थी।
सबके लिए अपनी अपनी लत लगाने वाली मशीन।
बाप रे, ये तो मशीन की बात हुई, पर ये गाना हम इंसानों पर इतना असर क्यों करता है, इसके साइकोलॉजिकल और सोशल नतीजे क्या हैं?
हाँ, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। ये सिस्टम हमारी जो बेसिक मनोवैज्ञानिक कमजोरियां हैं ना, उनका फायदा उठाता है।
जैसे?
जैसे हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, खतरे को भांपता है, अपने ग्रुप के लिए लॉयल रहता है, जिसे कभी कभी लिजर्ड ब्रेन भी कह देते हैं, उसको ये एल्गोरिदम लगातार उकसाते रहते हैं।
अच्छा, जैसे वो डोपामाइन वाला चक्कर, हर नोटिफिकेशन, हर लाइक।
हाँ बिल्कुल, वो दिमाग को एक छोटा सा रिवॉर्ड देता है, जैसे स्लॉट मशीन। फिर है कन्फर्मेशन बायस, हम वही सुनना चाहते हैं जो हम पहले से मानते हैं, और एल्गोरिदम वही दिखाता रहता है।
हाँ, अपना इको चेंबर बन जाता है।
बिल्कुल, और नेगेटिविटी बायस भी है, हमारा ध्यान बुरी खबरों, खतरों पर ज्यादा जाता है, ऑनलाइन दुनिया इसका खूब फायदा उठाती है।
और इसका समाज पर क्या असर हो रहा है बड़े लेवल पर?
सबसे बड़ा असर शायद ये है कि जो एक साझा सच्चाई होती थी ना, जिस पर सब सहमत होते थे, वो जमीन खिसक रही है। हम सब अपने अपने फिल्टर बबल या इको चेंबर में बंद हो रहे हैं। हमें सिर्फ वही सुनाई देता है जो हमारे विचारों से मेल खाता है, बाकी दुनिया से जैसे कट से जाते हैं।
और इससे ध्रुवीकरण बढ़ता है।
जाहिर है, आपसी समझ कम होती है, और जो संस्थान है, मीडिया, साइंस, सरकार, उन पर भरोसा कम होता जाता है।
ये तो बहुत सीरियस बात है, मतलब अगर हम बेसिक फैक्ट्स पर ही सहमत नहीं है तो मिलकर बड़ी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे।
बिल्कुल, और किताब में एक और बात थी, मशीन के लिए प्रदर्शन, ये क्या है?
हाँ, ये बड़ा दिलचस्प था। इसका मतलब है कि ये जो सायरन का गाना है, ये सिर्फ हमारे देखने सुनने को नहीं बदल रहा, ये हमारे बर्ताव को भी बदल रहा है।
अच्छा, हाँ कैसे?
हम सब जाने अनजाने में एल्गोरिदम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। हम वो चीजें कहते हैं, वो तस्वीरें डालते हैं, वो पर्सनालिटी बनाते हैं जिससे हमें ऑनलाइन ज्यादा एंगेजमेंट मिले, लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स।
ओह, मतलब असल बातचीत, गहरे विचार, उनकी जगह दिखावा, गुस्सा दिखाना या विरोधियों पर तंज कसना ज्यादा फायदेमंद हो गया है ऑनलाइन दुनिया में।
काफी हद तक। इसी को वो प्रदर्शनकारी प्रवचन, परफॉर्मेटिव डिस्कोर्स कहते हैं। राजनीति में देखो, जर्नलिज्म में देखो, आम बातचीत में भी इसका असर है।
जैसे वो QAnon जैसी चीजें फैल गईं, या GameStop वाला जो हंगामा हुआ था, ये सब इसी के उदाहरण
हैं। हाँ, ये दिखाते हैं कि कैसे अटेंशन इकोनॉमी की डायनामिक्स काम करती है। तर्क पीछे छूट जाता है और इमोशनल लहरें, झुंड का बर्ताव हावी हो जाता है।
ये तो काफी, मतलब, डरावनी तस्वीर है। तो क्या कोई रास्ता है इससे बचने का? क्या हम ऑडियंसेस की तरह खुद को बचा सकते हैं?
किताब दो लेवल पर सलूशन बताती है। पहला है पर्सनल लेवल, खुद को मस्तूल से बांधना।
अच्छा,
मतलब हमें खुद कुछ करना होगा।
हाँ,
ज्यादा होश में रहकर डिजिटल दुनिया को इस्तेमाल करना, जैसे इन्फॉर्मेशनल हाइजीन, हम क्या देख सुन रहे हैं उसे सोच समझ कर चुने। एल्गोरिदम पर डिपेंड रहने की बजाय खुद तय करें कि जानकारी कहाँ से लेनी है,
जैसे न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करना या RSS फीड यूज करना।
हाँ बिल्कुल, और ये पहचानना कि कौन सा कंटेंट हमें सिर्फ गुस्सा दिलाने या डराने के लिए बनाया गया है, और उस पर तुरंत रिएक्ट ना करना। और हाँ, स्क्रीन से रेगुलर ब्रेक लेना, डिजिटल सबात।
मैंने भी कोशिश की है थोड़ी, मुश्किल तो है, पर हाँ, दिमाग थोड़ा शांत लगता है।
लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ पर्सनल कोशिश काफी है अगर पूरा सिस्टम ही ऐसा है?
बिल्कुल सही सवाल। इसीलिए दूसरा लेवल है सायरन्स को म्यूट करना, यानी सिस्टम में बदलाव लाना।
अच्छा, सिस्टम लेवल पर?
हाँ, किताब कहती है कि सिर्फ हमारी विल पावर काफी नहीं होगी, हमें सिस्टम के नियम बदलने होंगे, जैसे बड़ी टेक कंपनियों पर लगाम कसना, एंटी ट्रस्ट कानून,
डेटा प्राइवेसी और एल्गोरिदम्स में पारदर्शिता की बात भी होगी।
हाँ बिल्कुल, उसके लिए कानून बनाना, शायद पब्लिक इंटरेस्ट वाले प्लेटफॉर्म्स खड़े करना, लोकल जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के नए तरीके ढूंढना। मतलब लक्ष्य ये है कि इन्फॉर्मेशन का माहौल ऐसा बने जो सच्चाई और नागरिक भलाई को रिवॉर्ड करे, सिर्फ अटेंशन खींचने को नहीं।
तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? What are the key takeaways?
मेरे हिसाब से कुछ चीजें एकदम साफ हैं। पहली, अटेंशन इकोनॉमी। ये प्रॉब्लम है, जो सिस्टम आपका ध्यान बेचकर पैसा कमाएगा वो सनसनी और बंटवारे को ही बढ़ावा देगा। ये हम रोज महसूस करते हैं, वो स्क्रोलिंग की आदत, खबरों से होने वाली चेड़।
दूसरी, टेक्नोलॉजी न्यूट्रल नहीं है। लाइक बटन हो या रिकमेंडेशन एल्गोरिदम, हर डिजाइन का असर होता है और ये मुनाफे के लिए बने हैं, अच्छी बहस के लिए नहीं। ये सोचना जरूरी है कि ये फीचर्स हमें कैसे बदल रहे हैं।
तीसरी, साझा सच्चाई का संकट। ये सबसे खतरनाक है, जब हम बेसिक फैक्ट्स पर ही सहमत ना हो तो समाज कैसे चलेगा। ये हम अपनी बहसों में देखते हैं, दोस्तों से, परिवार से, लगता है अलग अलग प्लैनेट पर है।
और चौथी, आक्रोश, गुस्सा। ये एक बिजनेस मॉडल बन गया है, क्योंकि गुस्सा, डर, नफरत, ये ऑनलाइन सबसे ज्यादा एंगेजमेंट लाते हैं। तो बहस प्रॉब्लम सॉल्विंग से ज्यादा एक परमानेंट गुस्से वाली मशीन बन जाती है।
और ताजवी, हमें दोनों लेवल पे काम करना होगा, पर्सनल भी और सिस्टमिक भी। अपनी आदतें सुधारनी होंगी, लेकिन सिस्टम को बदलने के लिए भी लड़ना होगा। भारत जैसे देश में ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं, जहां डिजिटल दुनिया इतनी तेजी से फैली है।
मेरे लिए तो इस पूरी बातचीत में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये परफॉर्मेटिव डिस्कोर्स वाली थी, कि कैसे हम अनजाने में एल्गोरिथम को खुश करने के लिए जी रहे हैं।
और मेरे लिए शायद ये एहसास कि ये संकट कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक डिजाइन का नतीजा है। और ये भी कि समाधान सिर्फ पर्सनल नहीं हो सकता, हमें मिलकर सिस्टम बदलना होगा। यहाँ वो बात फिर याद आती है।
कौन सी?
21st सेंचुरी में सबसे क्रांतिकारी कार्य सचेत रूप से ये चुनना है कि आप किस पर ध्यान देते हैं। इस पर संप्रभुता पुनः प्राप्त करना हमारे लोकतंत्र को पुनः प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है। अपना ध्यान वापस पाना ये अपने आप में एक बड़ा कदम है।
बिल्कुल। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। अगर एल्गोरिथम हमारी दुनिया को सिर्फ एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो इंसानी अनुभव के कौन से जरूरी हिस्से, जैसे शांति से सोचना, मुश्किल चीजों को धैर्य से समझना, दूसरों के लिए हमदर्दी रखना, ये सब कहाँ जा रहे हैं? क्या ये पीछे छूट रहे हैं?
और इसकी लंबे समय में क्या कीमत हो सकती है?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।